मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 25 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 5 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं दीप्ति शर्मा, आप आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, अरविंद कुमार भभुआ बिहार से हैं, समीर पवार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हैं, अरुण पुंडीर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और शिवांगी शर्मा बिधुना उत्तर प्रदेश से हैं। तो दीप्ति, अरविंद, समीर, अरुण और शिवांगी आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के मुख्य विषय में मैं कल के ही विषय को पूरा करना चाहूंगा। कल हम लोगों ने भारत अफ्रीकी संबंधों के बारे में थोड़ी सी बातें की थी, वक्त की कमी के कारण मैं पूरी बात नहीं कर पाया या यूं कह लीजिए कि मेरा मन नहीं भरा, इसलिए मुझे लगा कि नहीं आज भी उसी इश्यू पर बात करना चाहिए क्योंकि टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है और हमारे प्रधानमंत्री जी अभी अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं भी, तो आज भी हम लोग भारत अफ्रीकी संबंध पर बात करेंगे। लेकिन पहले कुछ दूसरी छोटी छोटी जो खबरें हैं उन पर बात कर लेते हैं। आपने न्यूज में भी सुना, अखबारों में भी आज दिया हुआ है कि किस तरह से भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है, अभी पार्लियामेंट ने पारित कर दिया है। आपको विधेयक की प्रक्रिया मालूम है, राज्यसभा लोकसभा जब दोनों ही उसे पारित कर देते हैं तो फिर अब राष्ट्रपति जी के पास विधेयक जाता है और राष्ट्रपति जी के साइन होते ही वो अधिनियम बन जाता है और अधिनियम बनते ही वह लागू, देखिए तुरंत नहीं होता है, सरकार उसे फिर लागू करती है। हो सकता है कि तुरंत ही उसे लागू कर दे या उसमें व्यवस्था ही की गई हो, लेकिन कभी कभी बहुत से ऐसे अधिनियम हैं जिन्हें लागू करने में वक्त लग जाता है। मतलब अब सरकार के पास ये हथियार है, अब उसका इस्तेमाल कब करती है वो उसके ऊपर होता है। इसमें जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो करप्शन का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये अपडेट होगा, ये लेटेस्ट होगा। इसके बारे में आप केवल इस विधेयक की 3 चीजें याद रखें, आपके लिए पर्याप्त होगा। पहला तो ये है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रोविजन किया गया प्रावधान वो ये है कि जो रिश्वत देगा उसे भी सजा होगी, 7 साल की सजा। रिश्वत लेने वाले को भी सजा होगी, रिश्वत लेने वाले का तो सजा होती ही है, देने वाले को भी सजा होगी। तो लेने वाले के लिए प्रोविजन किया गया है, देने वाले के लिए प्रोविजन किया गया है, ये 2 पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इस तरह के जो भी मामले होंगे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए, एक अच्छी बात ये की है कि उसका निपटारा 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। अदरवाइज आप जानते हैं कि हमारे यहां जो हालत है न्यायिक प्रक्रिया की कि उसे पता लगा कि 20-20 साल लग जा रहे हैं। और कल अगर आपने कैलाश सत्यार्थी जी का आर्टिकल पढ़ा हो जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, तो किस तरीके से बता रहे हैं कि बच्चों के अपराधों को लेकर के, बच्चों के विरुद्ध जो अपराध किए जाते हैं उनको लेकर के जो कोर्ट में केस चल रहे हैं, और अगर उसी रफ्तार से चलते रहे तो वो बच्चा पता लगा कि बूढ़ा हो जाएगा तब तक वो केस का फैसला नहीं होगा, मतलब इतनी डिले होती। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 साल में उसका फैसला हो जाएगा। और सच पूछे तो अगर हमें अपनी न्यायिक प्रक्रिया में सुधार करना है तो हर केस के लिए, हर मामले के लिए इस तरह का समय निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। और आप महसूस कर रहे होंगे कि अब जो विधेयक आ रहे हैं, जो कानून आ रहे हैं, उसमें इस तरह के प्रावधान अक्सर किए हुए आपको दिखाई देंगे। दूसरी जो छोटी सी खबर है मित्रों की, पाकिस्तान में चुनाव हो रहे हैं, देखते हैं कि क्या परिणाम आते हैं। चूंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है इसलिए वहां के चुनाव भारत के लिए भी काफी कुछ मायने रखते हैं। अगर थोड़ा सा लिबरल किस्म के अगर सत्ता में सरकार आ जाती है तो स्वाभाविक है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बेहतर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो बस इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, फिर अब जिस चुनाव हो जाने के बाद फिर स्थितियां देखेंगे, अगर कुछ ऐसा विशेष चर्चा करने लायक हुआ तो। एक खबर आपने सुनी भीड़ द्वारा हिंसा को लेकर के लगातार कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। इसमें अब कहा गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है। नोडल ऑफिसर का मतलब होता है मित्रों की जो पुलिस अधीक्षक के रैंक का होगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे आप SP कहते हैं, कि वह उसके लिए एक केंद्र बिंदु का काम करेगा, उसी के पास सारे लोग जाएंगे करेंगे और वो समन्वय का काम करेगा, जो भी अधिकार होंगे उसको होंगे या फिर वो अपनी चीजों को किस तरीके से लागू करता है। लेकिन एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है कि जो SP लेवल से कम का ऑफिसर नहीं, देखिए यहां रैंक की बात की गई है, जरूरी नहीं कि वो SP ही हो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ही हो, वो रैंक उसका सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का होना चाहिए जो एक रेस्पेक्टेड रैंक मानी जाती है। क्योंकि जब आप एक बड़े रैंक के अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाते हैं तो उसकी रेपुटेशन बढ़ जाती है, मतलब उसकी गंभीरता दिखाई देती है। मैं आपको फ्रेंड्स इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसमें आपको एक शब्द मिलेगा ICA, इसका फुल फॉर्म है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, है ना। कभी कभी प्री में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट है जिस पर करीब दो मतलब करीब 20-25 बैंक ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने साइन किए हैं, और इसका मकसद है कि जो बैड लोन होते हैं, जो लोन वापस नहीं आ पाते, बैंकों को नहीं मिल पाते, उनके लिए एक व्यवस्था की गई है कि इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। बस इतना भर आप ध्यान में रखिए। थोड़े से और अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल कमेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप उसे देख लेंगे। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के मुख्य विषय पर जो भारत अफ्रीका संबंधों से जुड़ा हुआ है। पहली बात, मैं आपको 2015 का वह प्रश्न पढ़कर सुनाना चाहूंगा जो आपके मेंस के सेकेंड पेपर में पूछा गया था। इससे आपको थोड़ा सा अनुमान लगाने में आसानी होगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्यतया आप पाएंगे कि जो इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं होते, और देखिए स्वाभाविक भी है कि एक स्टूडेंट से इंटरनेशनल रिलेशन पर स्पेशली बहुत एनालिटिकल आंसर की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। तो सामान्यतया आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं उनकी जो बनावट होती है वो इस तरीके की होती है कि अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी, अच्छी का मतलब ये मत कर लीजिएगा कि बहुत अच्छी जानकारी, इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ी सी भी अच्छी जानकारी है तो आप आंसर लिख सकते हैं। अफ्रीका पर देखिए किस तरह का प्रश्न पूछा गया है। अफ्रीका में भारत की बढ़ती हुई रुचि के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नो डाउट कि इंग्लिश में क्रिटिकल एग्जामिन है, इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, क्रिटिकली एग्जामिन। तो देखिए यहां क्रिटिकली एग्जामिन से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि सीधे सीधे उन्होंने बता दिया कि इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं और इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो क्लियर कर दिया ना, तो सकारात्मक पक्ष के कुछ बिंदु उठा लीजिए और आप नकारात्मक पक्ष के कुछ बिंदु उठा लीजिए। यहां आपको करना यह है कि सीधे सीधे बिंदु नहीं लिख देना है कि सकारात्मक पक्ष ये हैं और नकारात्मक पक्ष ये हैं। आपको उन पर कमेंट भी करना है कि ये सकारात्मक है तो क्यों है, ये नकारात्मक है तो क्यों है। तो जब आप उनको उन पर कमेंट करते चलेंगे, उनका मूल्यांकन करते चलेंगे, तो क्रिटिकली एग्जामिन हो जाएगा, बस उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको थोड़ी से भारत अफ्रीकी संबंधों के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारियां देना चाहूंगा। देखिए, जो अफ्रीका महाद्वीप है ये दुनिया का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। इंपॉर्टेंस तो आप तभी समझ सकेंगे ना जब आप उसके महत्व को जानें। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो लैंड एरिया है टोटल उसका 20% अफ्रीका महाद्वीप के पास है, और जो टोटल पॉपुलेशन उसका 16% अफ्रीका महाद्वीप के पास है, अफ्रीका महाद्वीप में है कह लीजिए 16%। और अगर आप इसमें भारत की पॉपुलेशन, चूंकि भारत के संबंधों की बात हम कर रहे हैं, तो देखिए कैसे आप अपने दिमाग में रच सकते हैं, कुछ चीजें रच सकते हैं अपनी तरफ से। तो 16% अफ्रीका महाद्वीप की पॉपुलेशन है, 54 कंट्रीज हैं। अब जब 54 कंट्रीज हैं तो यूएनओ की टोटल संख्या कितनी है, मोर आर लेस 200 है, तो अगर आप अफ्रीका महाद्वीप से अपने संबंध बेहतर कर पाते हैं तो आप देखिए कि 25% समर्थन आपको मिल गया यूएनओ में पूरा अफ्रीका महाद्वीप के साथ, पहली बात। दूसरी बात, पॉपुलेशन देखिए कि 16% अफ्रीका महाद्वीप की है, भारत की भी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की लगभग 16% है। तो अगर भारत और अफ्रीका एक हो जाएं तो आपको नहीं लगता है कि दुनिया की एक तिहाई आबादी केवल इन दोनों के पास हो जाएगी? और भारत का प्रभाव कितने देशों पर हो जाएगा? एक तिहाई आबादी पर, जो बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से आप चीजों को जोड़कर एक दूसरे से इंटर रिलेट करके और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, अदरवाइज तो सिंपल सी चीजें दिखाई देती कि ठीक है तो है। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में बहुत ज्यादा वन संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, जैव विविधता है, ये सब तो है ही जो भारत के लिए बहुत काम की चीज होगी, और भारत इन सब देशों से इस तरह की वस्तुएं आयात भी करता है, और हमारी जो पेट्रोलियम की जो जरूरत है उसका 25 टू 26% पेट्रोलियम हम सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप से ही मंगाते हैं, वहां के देशों से मंगाते हैं। तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस हो सकता है समझ लें। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो अफ्रीका के जो देश हैं, अफ्रीका महाद्वीप के, उन्होंने एक अफ्रीकी संघ बनाया हुआ है, अफ्रीकी संघ, और अफ्रीकी संघ में भारत को उन्होंने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया हुआ है, जो बड़ी बात होती है, मतलब एक सम्मानजनक स्थिति है। और आपने ये भी अखबारों में पढ़ा होगा कि भारत अफ्रीकी मंच भी बना हुआ है, भारत अफ्रीकी फोरम मंच बना हुआ है, और उस पर अफ्रीका, वहां अफ्रीका के सारे देश आते हैं और उसमें भारत भी होता है, और आपस में एक दूसरे से फिर बातचीत होती है। तो आप इसके आधार पर कह सकते हैं कि किस तरह से भारत अफ्रीका महाद्वीप को बहुत ज्यादा महत्व दे रहा है, लेकिन हमसे थोड़ी सी देरी भी हो गई है, चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा वहां बढ़ चुका है, हमने थोड़ी सी देरी कर दी क्योंकि अफ्रीका को भारत ने शुरू में उतना महत्व नहीं दिया जबकि बहुत ज्यादा गुंजाइश थी। मतलब अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि जहां भारत ने वहां के स्वतंत्रता संघर्ष को खुलेआम समर्थन दिया, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं केन्या, तंगानिया, युगांडा, ये पूर्वी अफ्रीका है, और घाना और नाइजीरिया, ये पश्चिम तट है, अफ्रीका का पश्चिम तट, और तंजानिया के एक लीडर हुआ करते थे जूलियस नेरेरे, हम लोग जब तैयारी करते थे उस समय लीडर थे, हम लोग याद करते थे इनका नाम, उनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला जी के बारे में आप जानते हैं, उनको दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। इसी तरह से केन्या के एक जोमो केन्याट हुए हैं, उनको भी वहां उस देश का गांधी कहा जाता है। तो आप कल्पना करके देखिए कि उन देशों में भारत का कितना जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव है कि वो अपने लीडर को गांधी जी के नाम के साथ जोड़कर देख रहे हैं, तो ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसमें एक बात और है फ्रेंड्स, इसको आप तब समझ सकेंगे जब आप एटलस उठा करके देखेंगे। भारत से मान लीजिए गुजरात से एक स्टीमर यूरोप के लिए जाना चाह रहा है तो कैसे जाएगा, हमारा पुराना रूट भी लगभग यही रहा है। अब आप देखें कि वो मुंबई या गुजरात से निकलेगा, अब वेस्ट में आप चलना शुरू कीजिए, करते करते वो जाएगा और इसके बाद वो लाल सागर के पास पहुंच जाएगा, जिसे आप आदिस अबाबा वगैरह कहते हैं, देखिए उसी के पास देखिए, फिर एक पतली सी सकरी ब्लू कलर की आपको लाइन दिखाई देगी, ये नहर है, स्वेज नहर है। यहां आ जाने के बाद, यानी कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंच जाने के बाद, हमारे जो स्टीमर है कहां एंटर कर जाएंगे, स्वेज नहर में एंटर कर जाएंगे, और जब वो स्वेज नहर में एंटर कर जाएंगे तो वो कहां पहुंच जाएंगे, सीधे भूमध्य सागर में पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आप तब समझ सकेंगे जब आपके सामने एटलस होगा, अदरवाइज मेरी केवल आवाज सुनकर के आप कतई नहीं समझ सकेंगे। वो मेडिटेरियन से भूमध्य सागर में पहुंच जाएंगे, और जैसे ही भूमध्य सागर में पहुंच गए तो आप देखिए रूस पहुंच गए, वो ये सॉरी आपके यूरोप पहुंच गए, एकदम यूरोप पहुंच गए। आप देखिए फिर थोड़ा सा कि आपको ग्रीस दिखाई दे रहा है, आपको रोम इटली दिखाई दे रही है, फ्रांस दिखाई दे रहा है, स्पेन दिखाई दे रहा है, ये सब भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। तो हमारे लिए यूरोप में पहुंचना कितना सरल है केवल इसके कारण। तो स्वाभाविक है कि अगर अफ्रीका महाद्वीप के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे विकसित होते हैं तो हमें चौतरफा फायदा है, और नो डाउट कि अफ्रीका को भी फायदा, ये एक तरफा बात नहीं है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप के देश भी भारत के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, तत्पर रहते हैं। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं उपलब्ध करा रहा हूं, आप लोग अपने ढंग से अपने अपनी जरूरतों के हिसाब से देख लेंगे। प्रश्न पूछा गया मुझसे ऑप्शनल पेपर के बारे में और काफी मेल भी आ रहे हैं। मित्रों, ऑप्शनल पेपर का चुनाव कैसे करें, इस बारे में बकायदे मेरा यूट्यूब पर एक प्रोग्राम है, आप उसे सुन सकते हैं, या फिर आप आईएएस कैसे बनेंगे जो मेरी किताब है उसमें बकायदे एक चैप्टर दिया हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। अब चुनाव आपको ही करना है, हाँ चुनाव करेंगे कैसे इसके बारे में तरीके बताए हुए हैं। तो सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से पांच दोस्तों के नाम हैं शशांक शुक्ला, शेखर शिवम, प्रेम पाल, जयेश और कौशिक दास मिदनापुर पश्चिम बंगाल से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस रेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।